एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अजीब सवाल से शुरुआत करते हैं।
कैसा सवाल?
सोचिए कि अगर आपको ये पता चले कि आपकी दुनिया, आपकी यादें, यहाँ तक कि समय भी, वो धीरे धीरे सड़ रहा है, विघटित हो रहा है।
अरे बाप रे!
तो आप क्या करेंगे? आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही दूरदर्शी लेखक फिलिप के डिक के उपन्यास यूबिक की दुनिया में उतर रहे हैं।
और ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो सच पर एक हमला है।
हाँ, हमला शब्द बिल्कुल सही है।
1969 में लिखा गया ये उपन्यास 1992 के भविष्य की बात करता है, पर इसकी गूंज तो आज भी सुनाई देती है। डिक की यही तो खासियत है
कि वो भविष्य की नहीं बल्कि हमारे मन के भविष्य की बात करते हैं।
बिल्कुल, यूबिक विज्ञान कथा, हॉरर और दर्शन का एक ऐसा कॉकटेल है जो पढ़ने के बाद भी आपके जहन में घूमता रहता है
और एक ही सवाल पूछता है,
जो आप देख रहे हैं क्या वो सच में हकीकत है?
तो चलिए इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। इस उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों के संघर्ष और उन गहरे सवालों को समझने की कोशिश करते हैं।
और इस सफर की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां मौत अंत नहीं है,
बल्कि एक अजीब सी शुरुआत है।
हाँ, इस दुनिया में एक तकनीक है जिसे कहते हैं हाफ लाइफ, मतलब अर्ध जीवन।
हाफ लाइफ,
जब कोई मरता है तो अगर समय पर उसके शरीर को फ्रीज कर दिया जाए तो उसकी चेतना एक मॉरिटोरियम नाम की जगह पर जीवित रहती है।
जीवित रहती है, ये तो एक तरह की मानसिक कोमा जैसी स्थिति हुई ना?
हाँ बिल्कुल, जहाँ वो सीमित समय के लिए बाहरी दुनिया से, मतलब अपने जीवित रिश्तेदारों से बात भी कर सकते हैं।
लेकिन क्या इसे जीना कहेंगे? ये तो एक लंबा, धीरे धीरे धुंधलाता सपना लगता है।
एक सजा जैसी, एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं।
और सिर्फ मौत ही नहीं, जिंदगी भी बहुत अजीब है।
हाँ, इस भविष्य में टेलीपैथी और भविष्य देखने जैसी मानसिक शक्तियां आम हो चुकी हैं।
और ये कॉर्पोरेट जासूसी का सबसे बड़ा हथियार बन गई हैं।
मतलब आपकी सोच भी अब आपकी अपनी नहीं रही, कंपनियां एक दूसरे के राज जानने के लिए टेलीपैथ को काम पर रखती हैं।
तो जाहिर है, जहां हमला है वहां बचाव भी होगा।
और यहीं इनर्शियल्स आते हैं।
इनर्शियल,
ऐसे लोग जिनकी मौजूदगी से ये मानसिक शक्तियां बेअसर हो जाती हैं, एक तरह के चलते फिरते मेंटल ब्लॉकर्स।
अच्छा, तो कहानी के केंद्र में है रैंसिटर एसोसिएट्स, जो इन्हीं इनर्शियल्स की एक सुरक्षा एजेंसी है।
इस एजेंसी के मुखिया हैं ग्लेन रैंसिटर, एक थके हुए लेकिन समझदार बिजनेसमैन।
और उनकी पत्नी एला, वो तो
मर चुकी है।
हाँ, वो हाफ लाइफ में है और रैंसिटर अक्सर अपनी कंपनी के मुश्किल फैसले लेने के लिए मॉरेटोरियम जाकर एला से सलाह लेते हैं।
ये रिश्ता, ये जीवन और मृत्यु की सीमाओं के पार एक संवाद है।
बिल्कुल, और कहानी का नायक है जो चिप।
जो चिप रैंसिटर का एक टेक्नीशियन, वो फिलिप डिक का एक क्लासिक किरदार है।
मतलब एक आम आदमी जो हमेशा पैसों की तंगी में रहता है, जिसकी सुबह ही अपने अपार्टमेंट के दरवाजे से बहस करते हुए होती है, जिसे खोलने के लिए 5 सेंट का सिक्का चाहिए।
भविष्य पर एक मजेदार लेकिन डरावनी टिप्पणी है ये।
सही कहा। तो कहानी में तेजी कब आती है?
तेजी तब आती है जब रैंसिटर और उसकी सबसे बेहतरीन टीम को चंद्रमा पर एक बहुत ही आकर्षक मिशन का ऑफर मिलता है।
चंद्रमा पर?
हाँ, उन्हें एक बड़े कॉरपोरेशन को मानसिक जासूसों से सुरक्षित करना है। टीम को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, पर काम इतना बड़ा है कि
वो मना नहीं कर पाते
और उनका शक सही साबित होता है। ये मिशन एक जाल था।
जाल?
वहां एक जबरदस्त बम विस्फोट होता है और ऐसा लगता है कि ग्लेन रैंसिटर मारा गया है।
ओह!
टीम सदमे में है, लेकिन वो किसी तरह उसके शरीर को एक कंटेनर में रखकर वापस पृथ्वी की ओर भागते हैं,
इस उम्मीद में कि वो उसे हाफ लाइफ में डाल पाएंगे।
और बस यहीं से उनकी दुनिया की बुनियाद हिलने लगती है, हकीकत की चादर तार तार होने लगती है।
पृथ्वी पर लौटने के बाद क्या होता है?
उनके साथ बेहद अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं।
अजीब? किस तरह की? क्या ये सिर्फ सदमे का असर है?
नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा भयानक है। ऐसा लगता है जैसे समय पीछे की ओर जा रहा है, या यूं कहें कि सड़ रहा है।
समय सड़ रहा है?
हाँ, जैसे जो चिप सिगरेट का एक पैकेट खरीदता है और वो उसके हाथ में आते ही पुरानी होकर धूल में बदल जाती है।
क्या?
आधुनिक वीडियो फोन पुराने जमाने के रोटरी फोन बन जाते हैं। ताजा खाना पल भर में बासी हो जाता है।
मानो उनकी पूरी दुनिया पर उम्र हावी हो रही हो।
बिल्कुल,
ये तो उपन्यास का सबसे शक्तिशाली रूपक है, एंट्रोपी।
एंट्रोपी?
हाँ, भौतिकी में इसका मतलब है किसी भी सिस्टम का धीरे धीरे विघटन और अराजकता की ओर बढ़ना। पर डिक इसे एक मनोवैज्ञानिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये सिर्फ चीजों का सड़ना नहीं है।
नहीं, ये भरोसे का, यादों का और पहचान का भी विघटन है। अगर आप अपनी यादों पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो आप हैं कौन?
और इसी खौफनाक माहौल में उन्हें उम्मीद की एक अजीब किरण दिखती है।
वो क्या?
मृत ग्लेन रनसिटर के रहस्यमयी संदेश।
संदेश? कैसे?
उसका चेहरा सिक्कों पर दिखाई देता है। बाथरूम की दीवार पर उसकी लिखावट मिलती है। वो उन्हें चेतावनी दे रहा है।
क्या चेतावनी?
वो कह रहा है, मैं जिंदा हूँ, तुम लोग मर रहे हो।
ये तो और भी ज्यादा उलझाने वाली बात है। एक तरफ दुनिया बिखर रही है और दूसरी तरफ उनका मरा हुआ बॉस उनसे बात कर रहा है।
हाँ, टीम में डर और अविश्वास फैल जाता है और फिर सदस्य एक एक करके बहुत ही भयानक तरीकों से मरने लगते हैं।
भयानक तरीकों से?
एक लड़की देखते ही देखते बूढ़ी होकर सूख जाती है और धूल के ढेर में बदल जाती है।
हे भगवान!
अब उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई है जो उन्हें एक एक करके खत्म कर रहा है। हर कोई दूसरे पर शक करने लगता है।
तो जो चिप, जो अब एक तरह से टीम का लीडर बन गया है, वो इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है।
और जब सच सामने आता है तो वो उनकी कल्पना से भी परे हैं।
तो सच क्या है?
सच ये है कि चंद्रमा पर हुए विस्फोट में रनसीटर नहीं मरा था।
क्या? तो फिर कौन?
जो चिप और उसकी पूरी टीम मारी गई थी।
पूरी टीम?
हाँ, रनसीटर अकेला जीवित बचा था। जो चिप और बाकी सब अब हाफ लाइफ में है एक साथ।
एक मिनट, अगर वो सब मर चुके हैं तो ये दुनिया जो वो देख रहे हैं वो क्या है? कोई सिमुलेशन और रनसीटर के संदेश?
उनकी ये बिखरती हुई दुनिया एक साझा मानसिक रचना है। वो सब एक ही मॉरिटोरियम में हैं और रनसीटर बाहर से, जीवित दुनिया से, उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन संपर्क इतना कमजोर क्यों है और उनकी दुनिया बिखर क्यों रही है?
क्योंकि उसी मॉरिटोरियम में एक और पुरानी चेतना है, एक किशोर लड़का, जॉरी मिलर।
जॉरी मिलर?
जॉरी एक मानसिक परजीवी है जो दूसरों की चेतना की ऊर्जा पर जीता है। वो उनकी दुनिया को खा रहा है ताकि खुद को जिंदा रख सके।
वो उनकी दुनिया को खा रहा है?
हाँ, उनकी दुनिया का विघटन असल में जॉरी की भूख का नतीजा है।
ये तो सच में भयानक है। तो जॉरी विनाश का प्रतीक है, एंट्रोपी का जीता जागता रूप।
बिल्कुल।
लेकिन किताब का नाम तो यूबिक है, ये क्या है? हर अध्याय की शुरुआत में इसका एक विज्ञापन आता है, कभी बियर स्प्रे, कभी कॉफी।
यूबिक जॉरी की विनाशकारी शक्ति का तोड़ है।
तोड़?
ये कोई साधारण उत्पाद नहीं है, ये एक सर्वव्यापी, लगभग ईश्वरीय शक्ति है जो वास्तविकता को बनाए रखती है, उसे सड़ने से बचाती है। ये रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है।
और डिक की यही कला है कि वो मोक्ष जैसी बड़ी चीज को एक साधारण स्प्रे कैन में डाल देते हैं।
हाँ, ये उपभोक्तावाद पर एक जबरदस्त व्यंग है
कि हमारी दुनिया में जहाँ हर चीज बिकाऊ है, वहाँ शायद मोक्ष भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में ही आएगा।
हम समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं, अध्यात्म में या अमेज़न की अगली डिलीवरी में?
बिल्कुल। तो कहानी में आगे क्या होता है?
हाफ लाइफ में फंसी हुई एला रनसीटर, जो चिप की मदद करती है, वो उसे यूबिक का एक स्प्रे कैन देती है और बताती है कि ये उसे जॉरी के प्रभाव से बचाएगा।
और क्या वो बच पाता है?
हाँ, जो चिप यूबिक का इस्तेमाल करता है और उसे अपनी शक्ति वापस मिलती है, वो जॉरी के खिलाफ लड़ने और हाफ लाइफ की इस दुनिया में जीने का एक तरीका खोज लेता है।
तो कहानी एक आशावादी मोड़ पर समाप्त होती
दिखती है। पर फिलिप डिक अपने पाठकों को इतनी आसानी से चैन की सांस नहीं लेने देते।
बस मतलब?
कहानी का अंतिम दृश्य हमें वापस वास्तविक दुनिया में ले जाता है, जहां जीवित ग्लेन रनसीटर अपनी टीम के खोने का शोक मना रहा है।
अच्छा।
वो अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए एक सिक्का निकालता है
और
उस पर जो चिप का चेहरा बना होता है।
क्या?
और उपन्यास इस एक पंक्ति पर समाप्त होता है।
यह तो बस शुरुआत थी।
दिमाग घूम जाता है
ये पढ़कर।
इस एक लाइन से डिक वास्तविकता की पूरी इमारत को फिर से ढा देते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए?
क्या रनसीटर की दुनिया भी एक और हाफ लाइफ है?
क्या वो भी मर चुका है?
या शायद जीवन और मृत्यु, वास्तविक और अवास्तविक के बीच कोई सीमा है ही नहीं? ये अंतिम मोड़ किसी भी स्थिर जवाब की संभावना को खत्म कर देता है
और बताता है कि रचना यानी यूबिक और विनाश यानी जॉरी का संघर्ष शाश्वत है।
ये अनिश्चितता ही इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत है।
सही कहा।
ये कोई आसान जवाब नहीं देता, बल्कि पाठक को गहरे सवालों के एक ऐसे समंदर में छोड़ जाता है।
अंत में ये कहानी हमें अपनी ही वास्तविकता की धारणा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है।
हम कैसे जानते हैं कि हमारा अनुभव सच है?
और ये दिखाती है कि अराजकता और क्षय के बीच भी अर्थ और जुड़ाव के लिए संघर्ष करना ही शायद मानवता का सार है, चाहे हम जीवित हों या हाफ लाइफ में।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।